आज की बात। श्रोता कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत में हालिया दिनों विशेष रूप से चर्चा में आने वाले एक जज की संदिग्ध मौत के मामले की। 30 नवंबर 2014 को बहुचर्चित सोहराबुद्दीन हत्याकांड की सुनवाई कर रहे जज ब्रिज गोपाल हरि कृष्ण लोया की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ये जज उस समय जिस केस की सुनवाई कर रहे थे उसके मुख्य आरोपी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह थे। जज लोया के परिवार ने अब इस समूचे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परिवार का कहना है कि जज की मौत के पीछे गहरी साजिश हो सकती है। उनके कपड़ों पर खून के छींटे थे। 48 वर्षीय जज ब्रिज गोपाल की संदिग्ध मौत के 3 साल बाद उनके परिवार ने जबान खोली है। जस्टिस लोया सीबीआई अदालत में सोहराबुद्दीन शेख पत्नी कौसर के फर्जी मुठभेड़ में हत्या के ट्रायल की सुनवाई कर रहे थे। इस हत्याकांड के केंद्र में गुजरात के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह थे। परिवार का कहना है कि संदेहास्पद परिस्थितियों में जस्टिस लोया का शव नागपुर के सरकारी गेस्ट हाउस में मिला था, लेकिन कई अनसुलझे सवाल इस मौत पर आज भी जवाब मांग रहे हैं। वरिष्ठ वकील एजाज नकवी का कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए।
तो कहीं ना कहीं हमको देखने में आता है कि इसमें बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और छोटा भी है तो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जिसने हत्या करवाई है जस्टिस लोया की, जस्ट और दूसरे गवाहों की जैसे तुलसी प्रजापति की, और वो भी है जो उसकी वाइफ है बेगम जो भी है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इस पे जनता को जो है सत्यमेव जयते के हिसाब से सत्य का पता लगना चाहिए।
अंग्रेजी पत्रिका कारवां से बात करते हुए जस्टिस लोया की बहन अनुराधा भांजी नूपुर और पिता हरकिशन का कहना है कि यकीन नहीं होता कि जज ब्रिज गोपाल की हृदय गति रुक जाने से मौत हुई है। जस्टिस लोया की डॉक्टर बहन अनुराधा ये बात बयान करते हुए भावुक हो गई। परिवार का कहना है कि 30 नवंबर 2014 को जस्टिस लोया साथी जज स्वप्ना जोशी की बेटी की शादी में भाग लेने के लिए नागपुर गए थे। उनके रहने का इंतजाम वीआईपी गेस्ट में हुआ था। अगले दिन परिवार को बताया गया कि जस्टिस लोया की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जस्टिस लोया ने लातूर के दयानंद लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरे होने के बाद वकालत की शुरुआत भी उन्होंने लातूर जिला न्यायालय से की। कॉलेज में उनके सहपाठी और लातूर जिला न्यायालय में सहकर्मी रहे लातूर बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट उदय गावारे के अनुसार जस्टिस लोया एक उत्साही युवा थे जो अन्याय के खिलाफ थे। उनको अपने देश के कानून पर विश्वास था। उदय गावारे ने जस्टिस लोया के साथ बिताए हुए पलों को याद किया। उन्होंने बताया कि जस्टिस ब्रिज मोहन हरकिशन लोया दिलेर और बुद्धिमान इंसान थे। वो अन्याय के खिलाफ थे। उनका समाजवाद में दृढ़ विश्वास था। गावारे बताते हैं कि लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद हम 15 दोस्त वकालत में आए थे। जस्टिस लोया भी उनमें से एक थे। हम लोगों की सोच थी कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जस्टिस लोया भी इसी तरह से सोचते थे। उन्होंने बताया कि वो किसी भी केस का बहुत गंभीरता से अध्ययन करते थे। वो कोर्ट में तथ्यों पर बात करते थे। गवारे बताते हैं कि उनके दोस्त हंसमुख इंसान थे। वो तनाव बहुत कम लेते थे, लेकिन 2014 में जब वो दिवाली में लातूर घर आए थे तो बहुत तनाव में थे। जिस दिन उनकी मौत हुई थी गवारे उनके घर गए थे। उन्होंने बताया कि जस्टिस लोया के पिता और अन्य परिजन उनकी मौत को प्राकृतिक मौत नहीं मान रहे थे। उनके मन में मौत को लेकर बहुत से सवाल थे। सीबीआई की विशेष अदालत के जज ब्रिज गोपाल लोया की मौत की परिस्थितियों को अंग्रेजी पत्रिका द कैरवन ने संदेहास्पद बताया था। पत्रिका में मृत जज के परिजनों से बातचीत पर आधारित एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के आने के बाद से कुछ रिटायर्ड जजों, वकीलों और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने लोया की मौत की जाँच कराने की मांग की। पत्रिका द कैरवन की रिपोर्ट में कहा गया था कि जज लोया को ऑटो रिक्शे में अस्पताल ले जाया गया था। इसके अलावा लोया की बहन ने सवाल उठाया था कि दिल का दौरा पड़ने की हालत में उनका ECG क्यों नहीं किया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने एक ECG रिपोर्ट भी छापी। दांडे अस्पताल के प्रबंधकों ने भी अखबार को बताया कि जज लोया का ECG टेस्ट किया गया था, मगर द कैरवन के राजनीतिक मामलों के संपादक हरतोष सिंह बल ने ट्वीट करके कहा कि अभी तक के लिए तो इतना ही नोट करना काफ़ी है कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो ECG रिपोर्ट छापी है और जिसका हवाला NDTV ने दिया है, उस पर तारीख 30 नवंबर की है, जो जज लोया की मौत से एक दिन पहले की है। महाराष्ट्र के लातूर शहर के बार एसोसिएशन ने लोया की मौत की जांच को लेकर एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की है ताकि सब कुछ साफ हो सके। इस विषय पर मीडिया के एक बड़े भाग में खामोशी रही, लेकिन इसी बीच बहुत से महत्वपूर्ण लोगों ने इस बारे में अपने विचार रखे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल,
मैं सबसे पहले कैरवन को और हरतोष बल को बधाई देना चाहता हूँ फॉर शोइंग द करेज टू कम आउट विद द स्टोरी। और इससे जिस दिन मैंने स्टोरी पढ़ी थी, आई कुडंट स्लीप द होल नाइट। एंड ये किसी ये इट्स नॉट अबाउट जस्टिस फॉर जस्टिस लोया, इट्स अबाउट द होल कंट्री, इट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया। पहली चीज़ तो इतना सेंसिटिव केस डील करने वाले जज की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में डेथ हो गई, तो और वो जो सबूत सामने आ रहे हैं वो इतने सनसनीखेज हैं कि उससे एक शक पैदा होता है कि उनका कत्ल किया गया था कि उनकी एक्चुअली हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। तो उसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि अगर ये एक्चुअली हत्या हुई है तो पूरी की पूरी देश के लिए खतरा है, क्योंकि अगर जज ही सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब तो किसी भी जज को कत्ल करके और पूरी जुडिशरी के मन पे इस टाइम क्या गुजर रही होगी कि यार मैंने अगर इन लोगों से पंगे ले लिए तो मेरा क्या होगा, मेरे को भी कल ये लोग मार डालेंगे। तो जब जज ही सुरक्षित नहीं होंगे तो ना डेमोक्रेसी बचेगी ना भारत बचेगा।
वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ भी इस प्रकरण को लेकर काफी आहत दिखे और उन्होंने भी कई सवाल उठाए।
CBI के जज रहे बृजगोपाल हरिकृष्ण लोया की मौत का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। उनके पास सिर्फ एक ही केस था। सन 2005 में सोहराबुद्दीन और कौसर बी, इन दोनों की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, और उस वक्त गृहमंत्री थे गुजरात के अमित शाह, जो अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उस मामले की देखभाल कर रहे थे, उस मामले की जांच कर रहे थे जस्टिस बृजगोपाल हरकृष्ण लोया। इनकी उम्र सिर्फ 48 साल थी, इनकी सेहत में कोई दिक्कत नहीं थी। ये नागपुर गए थे अपनी एक सहयोगी जज सपना जोशी की बेटी में शादी के लिए, और इन पर दबाव बनाकर इन्हें दो जज और वहाँ पर ले गए थे। और रात को इन्होंने अपनी बीवी से बात की टेलीफोन पर, करीब 41 मिनट बात की, बताया कि दिन भर क्या हुआ, किस तरह से शादी हुई, और वहाँ पर ये सिविल लाइंस के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। सुबह अर्ली आज द मॉर्निंग जो तड़के इनके पिता को फ़ोन आया, इनकी बहन को फ़ोन आया, इनके घर में फ़ोन गया कि जस्टिस लोया की मौत हो गई है दिल का दौरा पड़ने से। उनका पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया है और उनकी लाश को भेजा जा रहा है। लाश जब आई तो उनके साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ ड्राइवर लेकर आया था, और ये भी बताया गया कि जब दिल का दौरा पड़ा तो उन्हें एक ऑटो रिक्शा में बिठाकर दांडे अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी हैरत की बात है कि जहां VIP गेस्ट हाउस हो, जहां और भी जजेस रुके हुए हों, वहां पर कोई कार नहीं थी क्या, और ऑटो स्टैंड वहां से दूर बताया जाता है। बहरहाल दांडे अस्पताल में ECG की मशीन काम नहीं कर रही थी, और फिर दूसरे अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनको मृत घोषित किया गया आने पर ही। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम भी हो गया, घर वालों को सूचना नहीं दी गई, और इनके घर वालों का कहना है कि जब इनकी बॉडी आई, इनकी लाश आई, तो इनकी गर्दन पर खून के निशान थे, शर्ट पर कॉलर पर भी खून के निशान थे। सवाल ये उठता है कि इनकी बॉडी के साथ वो दो जज क्यों नहीं गए जिन्होंने इन पर दबाव बनाया था कि नहीं, शादी के लिए नागपुर चलना ही है।
जाने माने जज जस्टिस AP शाह का कहना है कि ये मामला काफी संदिग्ध है।
दीज एलिगेशंस आई फील इट इज very necessary that the CJ of the High Court or the CJI himself should look into this material, should decide whether to hold order an inquiry, because if these allegations are not investigated, it really causes a serious stigma on the judiciary. In recent times, there are several self-inflicted wounds on the judiciary, and I feel that such matters should be investigated.
भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी भी इस मामले में जांच किए जाने के पक्ष में हैं।
We don't have a photograph today in the main media of which was the hospital which was to which this judge was taken. How is it? What are the number of kilometers that the ambulance could have traveled between the time they said they had finished the postmortem and when the body was received in the village? They should have verified that. They just don't want to do it.
न्यायपालिका को भारतीय लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ माना जाता है और न्यायपालिका ने अनेक अवसरों पर अपनी स्वतंत्रता और मजबूती का सबूत दिया है। इस बीच इस प्रकार की रिपोर्टें भी आई हैं कि न्यायपालिका से जुड़े लोगों पर दबाव डालने की कोशिशें की गईं। जस्टिस लोया के बारे में भी बताया जाता है कि उन्हें 100 करोड़ रुपये और मुंबई में एक प्लॉट की रिश्वत देने की कोशिश भी की गई थी। बहरहाल भारतीय लोकतंत्र में ही इसकी रक्षा करने वाली हस्तियां भी हमेशा पैदा होती रही हैं जिन्होंने तीनों पालिकाओं की आज़ादी को सुनिश्चित किया है।